वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की श्री कृष्ण कृपा भक्ति सुनंदा श्रीमती पात्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय
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 कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपी ककांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणामामि हरिप्रिय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपात्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति मती सरलकारिणे श्री राम आज हम सब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के उत्सव को मना रहे हैं। ये एक हमारे भारत की और इस भारत में जितने भी जीवों की उत्पत्ति हुई जन्म हुआ उनका सौभाग्य है कि इसी भूमि पर भगवान श्री कृष्ण आए भगवान श्री राम आए और इसी भूमि पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए। भगवान श्री राम त्रेता युग में आए। त्रेता युग 12 लाख वर्षों का होता है। कितने? 12 लाख वर्षों का। जैसे कलयुग 4 लाख है, द्वापर युग 8 लाख है और त्रेता युग 12 लाख। तो कलयुग के तो 5000 साल ही हुए अभी, उसके पहले 8 लाख द्वापर के हुए और उसके पहले 12 लाख त्रेता के, सतयुग के 16। तो त्रेता 8 और 12 20। तो मतलब भगवान श्री राम 20 लाख वर्ष पहले जो त्रेता युग आरंभ हुआ था उस युग में आया। उसके बाद द्वापर युग आरंभ हुआ, उसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण आए, स्वयं आए भगवान। और 500 वर्ष पहले जो कलयुग आरंभ हुआ, कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। जो 500 वर्ष पहले कलयुग आरंभ हुआ, इसमें भगवान ने एक गुप्त अवतार लिया। गुप्त अवतार मतलब भगवान अपने भगवत्ता को छुपाकर अपने ही भक्त के रूप में इस धरती पर आ रहा है, ताकि वो इस बात को समझा सके कि भगवान की भक्ति होती क्या है। और यदि हम श्री चैतन्य महाप्रभु को न समझें, उनको न जानें, उनको समर्पण न करें, तो हम कृष्ण भक्ति कर ही नहीं सकते। कृष्ण भक्ति हो ही नहीं सकती यदि हमने श्री चैतन्य महाप्रभु को समर्पण न किया हो। क्योंकि भगवान जब महाप्रभु के रूप में आए, तो वो स्वयं इस बात को दर्शाने के लिए आए, प्रेजेंट करने के लिए आए कि मेरी भक्ति का रस यदि चखना है। वैसे भक्ति को कहा गया है भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति को रस अमृत का सिंधु कहा गया है। और हम सब सिर्फ इसकी एक बूंद पाना चाहते हैं, सिर्फ इसकी एक बूंद पाना चाहते हैं। खिड़कियां खुली हैं, इसे बंद करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति रसामृत सिंधु, वैसे भक्ति रस अमृत की सिंधु है, लेकिन हमने अभी तक उस भक्ति की रस की एक बूंद भी नहीं चखी। अगर हमने उस रस की एक बूंद चख ली होती तो पता है हम ऐसे चुपचाप बैठ ही नहीं सकते। हम उन ख्यालों से कभी डिस्टर्ब हो ही नहीं सकते जो दुनिया वाले हम पर जबरदस्ती डाल देते हैं। जिसने भक्ति की रस चख ली, उस एक बूंद को भी चख लिया, वो व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि उसके आसपास चाहे जो भी घट रहा हो, उसके अंदर एक आनंद रहता है, एक एंजॉयमेंट चलती रहती है, एक सुख का अनुभव चलता रहता है। जैसे मैं आपको उदाहरण, जिस व्यक्ति को ये पता हो कि उसके बैंक बैलेंस में हजारों करोड़ रुपए पड़े, हजारों करोड़ रुपए, वो व्यक्ति क्या कभी 500 रुपए खोने पर दुखी होगा? 5,000 जाने पर दुख होगा उसे? 1,00,000, 5,00,000, 1,00,00,000, उसका भी दुख नहीं होगा, क्योंकि उसके पास हजारों करोड़ पड़े, हजारों करोड़। इसीलिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो व्यक्ति भक्ति से मालामाल हो जाता है, जिसके पास भक्ति का धन पड़ा होता है, वो उसका जब दुनिया में कुछ जाता है तो ऐसा जाता है जैसे 500 रुपए गए, 1,000 रुपए गए, 1,00,000 रुपए गए, लेकिन उसके पास तो हजारों करोड़ रुपए पड़े। इसलिए खोते हुए भी वो कुछ नहीं खोता। जैसे एक सागर में से आप एक बूंद निकाल दो तो सागर का क्या गया? कुछ भी नहीं। भक्ति क्या करती है, आपके अंदर उस सागर को भर देती है। हम सब अंदर से खाली हैं, हमारे अंदर इस समय वो प्रेम रूपी सागर, वो कृष्ण प्रेम रूपी जो सागर, उसने प्रवेश बिल्कुल नहीं किया। अभी हम भक्त बने भी नहीं हैं। भक्त हम बने भी नहीं हैं, क्योंकि भक्त के जीवन में दुख नाम की चीज हो ही नहीं सकती। हो नहीं सकती मतलब उसके जीवन में दुख आएगा, लेकिन वो कभी उस चीज की कंप्लेंट नहीं कर सकता। उसके लाइफ में कभी कोई कंप्लेंट्स नहीं रही होगी। बड़े से बड़ा भी दुख उसके जीवन में आ जाए, बड़े से बड़ी चीज वो खो दे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, दुख नहीं। वो उस आप देखिए, अगर आप भक्तों के चरित्रों को गहराई में समझिए तो हर भक्त का चरित्र यही दर्शाता है। कि उन पर दुख तो बड़े आए लेकिन कभी किसी भक्त ने कंप्लेंट नहीं की कि हम पर ये दुख क्यों आया। जब आप ये प्रश्न पूछते हो कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब हम अभी तक समर्पित नहीं हुए हैं। देयर इज लैक ऑफ सरेंडर। जो शरणागत होता है, जिसने समर्पण किया है, वो ये पूछ ही नहीं सकता कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ। वो व्यक्ति हर चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। हमारा जीवन पता है कैसा है, छोटे से छोटी बात, छोटे से छोटी चीज पर हम कंप्लेन करते हैं, फिर वो छोटी चीज चाहे खाने में नमक की क्यों ना हो, कहीं खाना अच्छा नहीं लगा, हमने कह दिया अच्छा नहीं है, कभी किसी को थोड़ा सा भी इनकन्वीनियंस हुआ, थोड़ी सी भी तकलीफ हुई, तो हमने कह दी वो तकलीफ कि हमें ये तकलीफ हो गई है। हमारे गुरु महाराज के एक गुरु भाई थे जिनका नाम था श्री भक्ति योग महाराज जी, और भक्ति योग महाराज उनका ऋषिकेश में बहुत बड़ा मंदिर है आज भी गंगा के तट पर, श्री श्री राधा गोविंद देव जी नव मधुबन नाम है उस आश्रम का, बड़ा मंदिर है। अब महाराज जी को कैंसर डिटेक्ट हुआ और कैंसर डिटेक्ट होने की वजह से उनका पंजाबी शरीर था, बड़े हट्टे कट्टे रुष्ट पुष्ट थे, गोरे चिट्टे लंबे चौड़े, कैंसर की वजह से उनका शरीर छोटा होता चला गया और बिल्कुल पतले से हो गए। और फिर एक वक्त आया कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकते, तो जब हमारे गुरु महाराज उनसे मिलने गए थे और जब मिलकर वापस जा रहे थे तो जाते जाते ऐसा कहा बस राधा रानी अच्छा करेगी, तो उन्होंने सामने से महाराज जी ने जवाब दिया कि अभी कौन सा बुरा कर रही है, अभी भी तो वो अच्छा ही कर रही है, बस हमें तकलीफ हुई मतलब वो बुरा कर रही है। वो अच्छा ही कर रही है। हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्तिपाद जी महाराज को जब कैंसर डिटेक्ट हुआ तो डॉक्टर ने जैसे ही कहा इनको कैंसर है, रिपोर्ट्स में कैंसर आया, वो वापस आए और जितने मंदिर के बच्चे थे उन सबको कहा आज मैं तुम्हें पार्टी दूंगा, पिज्जा पार्टी, पिज्जा मंगाया सब बच्चों के लिए, सबको पिज्जा खिलाया। तो फिर हमारे जब गुरुदेव जी मिलने गए उनसे कहा ये क्या है, कहा ये पार्टी, कहा किस बात की पार्टी, कहा मेरे रिपोर्ट में कैंसर आया इस बात की पार्टी, कहा ये इसमें पार्टी की कौन सी बात है, कहा मुझे जो दिया है, जो भी मिला है मुझे वो कृष्ण से ही मिला है ना, तो वो बुरा कैसे हो सकता है मेरे लिए? वो मेरे लिए अच्छा ही है, वो मेरे लिए अच्छा ही है। कृष्ण मेरा कभी बुरा कर ही नहीं सकता। क्या मृत्यु बुरी है? अरे भक्त को तो मृत्यु भी कृष्ण से ही मिलाने का कार्य करती है। इसलिए मृत्यु जैसी चीज से भी जब आप अप्रसन्न न हो, अप्रसन्न न हो, उसे कहते हैं समर्पण। जब मृत्यु का भय भी न हो, जब आपके जीवन में बड़े से बड़ा दुख भी आए, देखिए भक्ति का पता कब चलता है? जैसे किसी को बुखार होता है तो डॉक्टर को पता कैसे चलता है? सबसे पहली चीज क्या करता है डॉक्टर, बताइए? हाँ, थर्मोमीटर से देखता है। और क्या करता है सबसे पहले? उसकी नर्व्स चेक की जाती है। बिल्कुल ट्रेडिशनल वे बता रहा हूं मैं आपको, जो किसी इंस्ट्रूमेंट की वो बस हाथ पर हाथ रखता है और कहता है वो हाई फीवर है ना। ऐसे ही प्रेम का पता कैसे चलता है? जैसे डॉक्टर नर्व्स चेक करता है ना, वैसे प्रेम का पता तब चलता है जब दुख हमें चेक करने आता है कि देखो इस दुख में तुम क्या उसी भाव से, उसी समर्पण से, उसी श्रद्धा से उसका नाम लेते हो या नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, या फिर कंप्लेन करते हो। हम छोटी से छोटी इनकन्वीनियंस को बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारा चेहरा बदल जाता है, हाव भाव बदल जाते हैं, शब्द बदल जाते हैं, भावनाएं बदल जाती हैं, और कभी कभी तो हम पूरे के पूरे खुद बदल जाते हैं, पूरे के पूरे बदल जाते हैं। बस किस लिए? ये कौन है? ये चेक करने आया है, नर्व्स चेक की जा रही है। देखो क्या अब भी तुम में से उसी विश्वास के साथ, उसी प्रसन्नता के साथ, उसी भाव के साथ थैंक यू कृष्ण निकलता है क्या? थैंक यू कृष्ण, थैंक यू कृष्ण। ये सुख में बोलना आसान है, लेकिन क्या दुख में भी ये निकलता है? तब समर्पण की टेस्ट होती है। धन्यवाद भगवान। हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है तो धन्यवाद तो बोलेंगे। वेटर पानी देकर जाता है उसको कहते हैं धन्यवाद, थैंक यू। कैब से उतरते, मैं तो कैब से जब उतरता हूं कहता हूं थैंक यू। तो ड्राइवर को हमने कहा क्यों? क्योंकि उसने सुरक्षित हमें पहुंचा दिया। लेकिन कभी हम असुरक्षित होने पर भी जब कृष्ण को कहे थैंक यू, जब असुरक्षित होने की भी भावना मन में आए उस समय भी आप कहो थैंक यू कृष्ण। जब वो परिस्थिति जीवन में आए जिस परिस्थिति में आप, आपका मन उदास हो जाए, आपके मन के विपरीत सब कुछ होने लगे, जैसा आप चाहते हो वैसा बिल्कुल न हो, और ऐसा होगा भी। आपके जीवन में एक बार नहीं बार बार ऐसी बातें होंगी जब आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं होगा, और जब वैसा नहीं होगा तब आपके मुंह से जब निकलेगा थैंक यू कृष्ण। मैंने श्रील भक्तिपाद जी महाराज को एक बार देखा था, वो व्हीलचेयर पर हुआ करते थे, उनको बचपन से पोलियो था तो वो व्हीलचेयर पर थे। एक बार वो व्हीलचेयर उनकी चलते चलते पलट गई और वो गिर गए। जैसे ही वो नीचे गिरे उनके मुंह से निकला थैंक यू कृष्ण। समझिए इस बात को कि दुख के समय धन्यवाद भगवान कहना बहुत मुश्किल होता है, और भक्ति और समर्पण वही है जो आपको दुख के समय पर भी धन्यवाद कृष्ण कहना सिखाया है। क्योंकि मैं फिर कहता हूं इस बात को मान लो, समझ लो, जान लो कि कृष्ण कभी मेरा बुरा कर ही नहीं सकते। तो फिर हमारा बुरा करता कौन है? अगर कृष्ण नहीं करते तो फिर हमारा बुरा करता कौन है? हम ही करते हैं। और हमने जो हमारा बुरा किया होता है कृष्ण उससे भी हमें बचाते हैं। क्योंकि जब आप कहते हो कृष्ण कृष्ण, जब आप माला करते हो, जब आप कृष्ण नाम लेते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये नाम जो सजा आपको सूली से मिलने वाली होती है वो कांटे में डाल देता है। सूली से मिलने वाली सजा कांटे से टल जाती है। हमने अपना इतना बुरा किया है, इतना बुरा किया है जो हम सोच भी नहीं सकते। ये जो भगवान का नाम हमें मिला है ना, ये हमें शरीर के प्रारब्ध और मन के प्रारब्ध दोनों से बचाता है। दो प्रकार के दुख होते हैं, समझिए इस बात को। एक शरीर का दुख है और एक मन का दुख है। शरीर का दुख ठीक हो सकता है, उसका इलाज है, लेकिन मन के दुख का कोई इलाज नहीं है। मैं तो ये सोचता हूं कि जब कोई किसी की हत्या कर देता है, तो जब कोई किसी की हत्या करता है वो इंसान तो मर जाता है, मतलब उसका शरीर समाप्त हो जाता है, डेड हो जाता है, उसके बाद वो कुछ भी फील नहीं कर पाता। लेकिन इससे बड़ी हत्या होती है मन की हत्या, क्योंकि जब हम किसी की मन से हत्या करते हैं तो वो इंसान न ठीक से जी पाता है और न ठीक से मर पाता है, वो इंसान तड़पता रहता है, और उस तड़पने की वजह से उसे ज्यादा कष्ट होता है, ज्यादा तकलीफ होती है। शरीर का कष्ट नजर आता है लेकिन मन का कष्ट नजर नहीं आता। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि मन के जो प्रारब्ध होते हैं, कई लोगों से हमारे मन के प्रारब्ध जुड़े होते हैं, वो हमारे शरीर को दुख नहीं पहुंचाते। श्री राधे कहिए ना, कई लोग हमारे शरीर को दुख नहीं पहुंचाते। आपके शरीर को तकलीफ नहीं होगी, वो आपके शरीर को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपको मन से मार देंगे। आप मन से दुखी हो जाओगे उनके साथ रहते 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 रहते, उनकी बातें सुनते 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 सुनते, क्योंकि उनके साथ हमारे मन के प्रारब्ध हैं। और ये भजन क्या करता है, ये भगवान का नाम क्या करता है, ये शरीर के प्रारब्ध को तो काटता ही है, साथ साथ जो मन के प्रारब्ध है उसे भी काट देता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि मन के प्रारब्ध भोगने का एक ही तरीका होता है। क्या तरीका होता है पता है? उस व्यक्ति में हमारा कोई ना कोई मोह हो जाए, क्योंकि तभी तो वो हमें दुखी कर पाएगा। और उस व्यक्ति में मोह कब होगा? जब कहीं ना कहीं हमारा उससे रिश्ता जुड़ेगा। इसलिए हमारे शरीर के जितने भी रिश्तेदार हैं जिनमें हमारा मोह है, उनसे हमारे कहीं ना कहीं मन के प्रारब्ध बापा। अब वो, अब देखिए भजन क्या करता है, ये कृष्ण नाम क्या करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कृष्ण नाम क्या करता है, कृष्ण भक्ति क्या करती है, कृष्ण कथा क्या करती है, कृष्ण नाम कृष्ण भक्ति कृष्ण कथा उस मोह को दुनिया में से निकालकर कृष्ण में डालने लगती है धीरे 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 धीरे। देखिए ये है ट्रीटमेंट ऑफ माइंड। तब वो मोह के प्रारब्ध तब तो कटेंगे जब मोह वहां से निकलेगा। कृष्ण भक्ति कृष्ण नाम कृष्ण कथा क्या करती है, आपको कृष्ण से प्यार होने लगता है, आपका मन अब कृष्ण में लगने लगता है, अब आपको कृष्ण की बातें अच्छी लगने लगती है, अब आपको कृष्ण कथा कृष्ण का सत्संग अच्छा लगने लगता है। वो अच्छा लगने से क्या होता है पता? जहां से अब हमारा मोह, जहां बहुत मोह था वहां अब वो मोह कम हो गया, घट गया। इसलिए अब जब वो व्यक्ति हमें कुछ बोलता भी है, कुछ कहता भी है, तो इतना दर्द नहीं होता, इतनी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरा अगर कोई है तो वो कृष्ण के अलावा कोई। ऐसे ये मन के प्रारब्ध कट जाते हैं। कृष्ण नाम सुनते सुनते, कृष्ण कथा सुनते सुनते, कृष्ण की बातें सुनते सुनते कृष्ण से प्यार होने लगता है। ऐसे ही तो रुक्मिणी जी को कृष्ण से प्यार हो गया। ये कृष्ण, ये जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना कि भक्ति एक सागर की तरह है, सिंधु की तरह है, और हम अंदर से खाली पड़े हुए हैं, सूखे हुए हैं, ड्राई जिसे कहते हैं, बिल्कुल ड्राइनेस आ गई है हमारे अंदर। ये जो कृष्ण कथा आप इस समय सुन रहे हो, कृष्ण की बातें सुन रहे हो, ये आपके कानों से आपके अंदर जाते हैं। जो जमीन अंदर ड्राई हो गई है, वो कहते हैं ना सूखा पड़ गया है, जब किसी धरती पर अभी गर्मी के दिन है, बहुत जगहों पर तपता हुआ सूरज सारे पानी को धरती में से खींच लेता है, और फिर उस धरती में क्या आने लगती है, ऐसे दरारें आने लगती है, वो फटने लगती है, ड्राई हो जाती है, और फिर क्या होता है, इंतजार किसका, बारिश, बरसते हुए बादल कब आएंगे, कब आएंगे। धरती और बादल अगर मिलते हैं तो सिर्फ बारिश से ही मिलते हैं, इन दोनों का भी मिलन होता है, धरती और बादल, धरती और बादल ये भी मिलते हैं, किससे, बारिश से मिलते हैं, इनको मिलाने वाला कौन है, बारिश। इसी तरह से हमारे अंदर भी वो जो जमीन है ना, वो बिल्कुल सूख चुकी है, उसमें भी दरारें आ चुकी हैं, ड्राई हो चुकी है, अब उसे चाहिए क्या, बारिश की वो बूंदें चाहिए, वो पानी चाहिए। जब ये कृष्ण नाम कृष्ण कथा आपके कानों से आपके भीतर प्रवेश करती है तो वो उन बादलों की तरह बरसती है और उस तपती हुई धरती को जल से भिगो देती है, और जैसे ही जल से भिगो देती है वहां पर सिर्फ एक बीज डालने की देर है, जैसे ही वहां बीज डाल दी जाए तो वो धरती फिर से हरी भरी हो सकती है, और वो बीज है कृष्ण भक्ति का बीज।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग इसीलिए चुना क्योंकि कलयुग में जो तपता हुआ दुख है,
यहां दुख का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है,
कलयुग, कलयुग मतलब जिस युग में कलह, कलह मतलब कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़ा, कलयुग में घर घर में कलह होना ही है, क्योंकि ये कौन सा युग है, कलयुग है। इस कलयुग में आप देखिए फैमिलीज छोटी होती चली जा रही है, वो दिन गए जब एक घर में, हाँ, दादा दादी भी रहते, पापा मम्मी भी रहते, पोते पोती भी रहते, सब एक साथ रहा करते, भाई बहन भी एक ही घर में रहते। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज होती चली जा रही है, और बच्चों को स्कूल में भी यही सिखाया जाता है, फैमिली मतलब मम्मी पापा और आप बस, और वो भी सिर्फ इतनी छोटी फैमिली में भी, कभी कभी उस फैमिली के लोग भी अलग अलग देश में रहने लगे। एक बेटा है मेरा अमेरिका में, बेटी मेरी रहती है लंदन में, और हम रहते हैं यहां इंडिया में। अरे एक फैमिली के भी चार टुकड़े हो गए, श्री राधे कही, कोई कहा, कोई कहा, कोई कहा। ऐसे में हर व्यक्ति
तप रहा है, तपिश कलयुग उसे तपा रहा है, उसके अंदर की जो जमीन है वो बंजर, वो ड्राई होती चली जा रही है। इसलिए आजकल लोग
फीलिंग्स को भी नहीं समझते। आप जो फील करते हो ना, देखिए हम सब कौन है, इंसान है, और इंसान मतलब इमोशंस, इमोशंस। नहीं तो हम में से इमोशंस निकाल दीजिए तो हम सब रोबोट बन जाएंगे। हम सब एक मशीन नहीं बन जाएंगे अगर हमें इमोशंस हो। आप इस समय हंस रहे हो तो इसलिए हंस रहे हो क्योंकि आपके अंदर इमोशंस हैं। कोई आपको कुछ कह दे आप रोने लग जाओगे, इसीलिए रोगे क्योंकि इमोशंस हैं। लेकिन आजकल इंसान इंसान के इमोशंस को समझ फील करना, उसे फील ही नहीं होते इमोशंस, फील ही नहीं होते। एक समय था जब इंसान वस्तु को यूज किया करता और लोगों को लव किया करता, ऐसा कहते हैं। देयर वॉज अ टाइम वेन थिंग्स वर यूज एंड पीपल वर लव, बट नाउ पीपल आर यूज एंड थिंग्स आर लव। आज लोगों की जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो वस्तु की तरफ हो गए, व्यक्ति की तरफ फिर हो सकता है वो आपसे भी इसीलिए जुड़े हो क्योंकि आप में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसमें उनको इंटरेस्ट है, या वो प्रॉपर्टी है, या वो पैसा है, या वो गोल्ड है, क्या पता क्या है, श्री राधे के लिए। क्योंकि इंसान आज वस्तुओं से प्रेम करने लगा है, व्यक्तियों से नहीं करने लगा। व्यक्तियों को तो वो सिर्फ यूज कर रहा है। किस लिए यूज कर रहा है? अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, श्री राधे के लिए। इसलिए कलयुग मतलब चारों तरफ कला कला कला। और ऐसे में श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर प्रकट होने का एक निर्णय लेते हैं। कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। कृष्ण कलयुग में भी आए, और आए तो ऐसा कुछ दे गए, ऐसा कुछ दे गए जिससे जो भी जुड़ा उसकी वो बंजर जमीन फिर से हरि नाम की वर्षा होने पर हरी भरी हो गई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गोलोकेरा प्रेमाधना हरी नामे संकीर्तना। नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं, गोलोकेरा प्रेमाधना कि महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु अर्थात कृष्ण और राधा रानी, कृष्ण और राधा रानी एक रूप में आए महाप्रभु के रूप में। बोलो गौरंगा गौरंगा गौरंगा। स्वर्ण रूप धारण करके पिघलते हुए सोने का रंग लेकर राधा रानी और कृष्ण एक रूप में धरती पर आए। अपने साथ क्या लेके आए? तो बोला गोलोकेरा प्रेमाधना, अपने साथ धन लेकर आए, बहुत सारा धन। कहां से लाए? गोलोक से लाए, अपने परम धाम से लाए। गोलोकेरा प्रेमाधना क्योंकि वहां पर भी धन है भगवान के धाम में, और वहां का धन क्या है? प्रेम धन है, और वहां प्रेम धन किस रूप में है? हरि नामे संकीर्तना। कि ये जो भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, महाप्रभु ये धन को लुटाने आए। बहादुर ये प्रेम के धन को लुटा दो, बहा दो, भारत के कोने कोने में ये धन को फैला दो। और मैं आप सबसे भी कहता हूं, हम सब महाप्रभु के आंदोलन के लोग हैं। जो आंदोलन, ये एक आंदोलन था, इट वॉज अ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन था। इससे पहले कभी भारत भूमि ने संकीर्तन नहीं देखा था। ये जो विजन और कंसेप्ट आया भारत में संकीर्तन का, मतलब संग मिलकर नाचते हुए गाते हुए नगर कीर्तन करना, रास्तों पर कीर्तन करते हुए चलना, इसे पहले कभी भारत में नहीं। कीर्तन होता था तो मंदिर में होता था, वो भी एक वर्ग के लोग, एक जाति के लोग ही कर सकते। लेकिन रास्तों पर, गलियों में, घर घर में यदि ये कीर्तन संभव हुआ, तो स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन था। और आप सब यहां जो भी व्यक्ति बैठा है, हम सब इसी आंदोलन का एक हिस्सा है। हम सब का भी ये धर्म बनता है कि हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। हम भी इस हरि नामेर संकीर्तन, इस धन को जगह जगह पर लुटाएं। ये कीर्तन लोगों को धन्य कर देता है। आप जिससे मिलो जहां जाओ, कोशिश करो कि उन्हें भी इस नाम संकीर्तन से जोड़े। कोशिश करो कि किसी तरह से उन्हें कीर्तन सुनाएं, किसी तरह से उन्हें ये मंत्र सुनाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसीलिए कहते हैं कि जब मिले तो कहना चाहिए हरे कृष्ण, ताकि ये नाम का जो शब्द है, कीर्तन का जो शब्द है, कान आ जाए। आपको खांसी आ जाए, आप कहिए हरे कृष्ण। आपको छींक आ जाए, आप कहिए हरे कृष्ण। आप जब 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 कृष्ण नाम लोगे, तो ये नाम का प्रचार होगा, प्रसार होगा, ये नाम और फैलेगा। जब जब एक कथा सुनाऊं आपको, जब श्री चैतन्य महाप्रभु शाम के संध्या के समय, इसी समय छह साल जिस समय हमारा सत्संग शुरू होता है, ये महाप्रभु का टाइम था। और उनके जो टोली थी, उनका जो ग्रुप था, उनकी जो टीम थी, वो हर शाम को एक घर में मिलते थे। और वो घर था एक भक्त का, जिसका नाम था श्रीवास। आज भी मायापुर में श्रीवास आंगन है, क्योंकि उस समय भारत देश पे मुगलों का राज था, इसलिए बाहर कीर्तन करना वास्तव में तो अलाउड भी नहीं था। लेकिन महाप्रभु तो जब निकलते, उस कथा पर भी आते हैं बाद बाद, तो शाम के समय क्या करते, ऐसे घर का दरवाजा बंद करते, खिड़कियां बंद करते, और सभी भक्त आते उस घर में और घंटों तक कीर्तन करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna.
तरह से महाप्रभु अत्यंत भाव में आकर नृत्य किया करते हैं। जब महाप्रभु ऐसे कूद कूदे तो धरती कांपती है। से थम थम करके नीचे दीवार थे। महाप्रभु की हाइट थी 8 फीट, ऐसे लंबे 8 फीट की उनकी हाइट और ऐसी लंबी भुजाएं, अनंत भुजाएं थी उनकी। और गौरंगा गौरंगा गौरंगा, सोने का उनका रंग और आंखों से आंसू की वो बूंद ऐसे लगती जैसे सोने पर किसी ने मोती रख दिया हो। और भाव में हरिनाम लेते हुए नाचते। एक दिन क्या हुआ कि श्रीवास जिनके घर में वो कीर्तन करते थे, उनका जो बेटा था श्रीवास जो थे, उनको रोने की आवाज आने लगी अपने घर में दूसरे कमरे से। तो चुपचाप उस कीर्तन से श्रीवास जी निकले और अंदर देखने गए कि उनकी पत्नी रो क्यों रही है। तो जब पहुंचे तो देखा उनकी पत्नी उनके मरे हुए बेटे के सामने रो रही है। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा हमारा बेटा नहीं रहा। उनका बेटा बहुत बीमार था उस दिन। और कहा देखो ये जवाब नहीं दे रहा, ये हिल नहीं रहा, इसकी सांसें नहीं चल रही। और उनके बेटे का शव वहां पड़ा था और सोचो वो मां कितना जोर जोर से रो रही होगी, कितना चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी कि मेरा बेटा चला गया। लेकिन श्रीवास जी ने जाकर उनको बताया क्या कहा। कहा तू रो ले पर आवाज इतनी ऊंची मत कर, महाप्रभु का कीर्तन डिस्टर्ब हो जाएगा। और वही श्रीवास अपने मृत संतान के वहां रोने के बजाय चुपचाप कीर्तन में चले गए और कीर्तन करने लगे। महाप्रभु ने अचानक कीर्तन बंद कर दिया। कहा कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। कहा कुछ तो यहां हुआ है, श्रीवास क्या गलत है यहां पर? कहा महाप्रभु कुछ गलत नहीं है, आप कीर्तन कीजिए। कहा नहीं, मुझे पता है कि कुछ तो यहां गलत है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और महाप्रभु दरवाजा खोलते हैं और उसके घर में और अंदर की तरफ जाते हैं तो देखते हैं उसकी पत्नी रो रही है और सामने उसके पुत्र का मृत शरीर पड़ा है। महाप्रभु श्रीवास को देखते हैं, कहा श्रीवास तेरा बेटा बीमार था, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? कहा महाप्रभु इस हरिनाम संकीर्तन के बीच में मैं बाधा नहीं बनना चाहता था। महाप्रभु ने श्रीवास को अपने गले से लगा दिया और उसने कहा कि देख इसे कहते हैं समर्पण, इसे कहते हैं सब तेरा। उसी समय महाप्रभु ने उस सामने पड़े हुए शव को कहा वे उठ जा, और उसी समय उनका बेटा बिल्कुल ठीक ठाक उठ होकर खड़ा हो गया और वो भी कीर्तन में नृत्य करने लगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। गोलोकेरा प्रेमा धना हरि नामेर संकीर्तन। ये भगवान का नाम भगवान के परम धाम से सीधे आया हुआ है। ये हरे कृष्ण महामंत्र भगवान के परम धाम गोलोक से आया हुआ है, इसे साधारण मत समझिएगा। और इसे डिलीवर करने स्वयं भगवान आए महाप्रभु के रूप में। और अब वो कार्य हमें देकर गए हैं कि आप ही हर व्यक्ति को ये नाम देने की कोशिश करो। एक बात कहूं, आपने मान लीजिए किसी को खाना खिला दिया तो वो खाना उसके शरीर में कब तक रहेगा बताओ? दो दिन तक का। सारा खाना जो खाया होता है वो धीरे धीरे करके शरीर से। किसी को आपने पानी पिला दिया वो पानी उसके शरीर में कब तक रहेगा? एक दिन तक का। लेकिन अगर किसी को आपने नाम दे दिया वो नाम उसके साथ सदा के लिए रहेगा, सदा। शरीर समाप्त होने के बाद भी गुरु ग्रंथ स्वयं कहता है जे मात पिता में तो सुत न भाई मन वहां नाम तेरे संग सहाय। वहां पर भी आपका नाम ही आपके साथ होगा। इसलिए नामदान जो करना कहते हैं ना, नामदान, नामदान को सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। क्योंकि जब जीव को नामदान मिल जाता है तो वो फिर अपने परम पिता भगवान के धाम की तरफ जाने की तैयारी कर चुका होता है। फिर उसे ये दोबारा शरीर ही नहीं लेना, इन ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी ना बुढ़ापा आएगा ना बीमारी होगी ना मृत्यु आएगा ना कोई कोई तकलीफ होगी, सारे समस्याओं का हल ये भगवान का नाम कर देता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। तो आइए आज के इस गौर पूर्णिमा के उत्सव को यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन हम फिर मिलेंगे कदे न कदे, फिर मिलेंगे और मिलेंगे मंडे शाम को होली के दिन। आप होली होली मना लीजिए फैमिली के साथ सुबह को, लेकिन शाम को गौर पूर्णिमा के कीर्तन में आइए। उस दिन हम गौर लीला सुनेंगे कि कैसे महाप्रभु प्रकट हुए और उनकी बाल लीलाएं भी सुनेंगे कि कैसे वो मस्ती किया करते हैं। आपको पता है जो जो कृष्ण लीला में आए वो सब गौर लीला में भी आए थे। यशोदा माता, आनंद बाबा सिर्फ नाम बदल के आए थे, कंस भी आया था, सब आए थे गौर लीला में भी। मतलब महाप्रभु जब धरती पर आए तो उनके साथ ये सब भी आए। इसलिए मैं अभी ऐसा प्रेरणा हो रही है कि हमें अब कभी तो पांच दिन की कम से कम या सात दिन की कम से कम गौर अगला उत्सव जो भी होगा वो होगा गौर लीला का उत्सव होगा, क्योंकि वो आप लोगों ने कभी सुना ही नहीं है, ना ही कभी कहीं से आपने किसी ने आपको सुनाया है। तो अगला उत्सव जो होगा वो गौर उत्सव होगा। जैसे ठाकुर जी बड़े चंचल और मस्ती करते थे ना, वैसे महाप्रभु जिनको निमाई कहते थे बचपन में वो भी ऐसे ही थे। आपको पता है एक बार यशोदा माता ने कृष्ण को कहा कि कन्हैया मैंने तुझे पहली बार ठीक से देखा है। वो पता है कब था? जब कृष्ण ने सात दिन के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया तब तक मां यशोदा कहती है कन्हैया अच्छा तू ऐसा दिखता है, तुझे कभी एक जगह खड़ा देखा ही नहीं, तो जब देख यहां से वहां उछल कूद नाच ये वो कभी चैन से देखा ही नहीं। अच्छा अच्छा तो तेरी आंखें बिल्कुल मुझ पर गई है, तेरे जो हाथ है वो बिल्कुल तेरे पिता पर गए हैं कन्हैया, तेरे तेरे तेरी जो कमर है वो बिल्कुल मेरे भाई यशोधर पर गई है। यशोदा के भाई का नाम था। अरे पहली बार तो तुझे मुझे ध्यान से देखने का मौका मिला, तू रहता गाय सामने, जब देखो तो उछलता है कूदता है भागता है और भागते भागते तू इतना बड़ा भी हो गया कन्हैया में देख ही नहीं पाई तुझे कभी। तो ऐसे ठाकुर जी हैं, वैसे ही निमाई भी हैं, उनकी भी ऐसी ही बड़ी नटखट लीलाएं हैं बचपन की। तो आइए आज के सत्संग को यही विराम देते हैं, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि गोलोक हृदय प्रेमाधन हरि नामे संकीर्तन। मनुष्य जन्म पाइए राधा कृष्ण न गाइए, जानिया पूजिया विष खाइए। ये कहा गया कि अगर आपको मनुष्य जन्म मिला लेकिन फिर भी आपने राधा कृष्ण के गुण नहीं गाए तो आपने जान पूछ के जहर दिया। इट इज सुसाइडल फॉर द सोल, इसे कहते हैं आत्मघाती। एक होती है आत्महत्या, मतलब वो शरीर की हत्या होती है, और आत्मघाती वो होते हैं जो आत्मा की हत्या कर देते हैं मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी कृष्ण नाम न लेकर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आइए दोनों लोग कीर्तन करते हैं और आप सभी ऐसे ही भाव आज नृत्य कीजिए जैसे आप सब श्रीवास कहा है, श्रीवास के आंगन में है, ये महाप्रभु भी आपके साथ हैं। तो आइए हम सब खड़े हो जाएं और दो मिनट ही सही इस भाव में कि हम नवद्वीप के नवद्वीप बंगाल में जहाँ महाप्रभु का प्रकट्य हुआ वो स्थान क्या था, नवद्वीप। वहाँ नवद्वीप है जो कमल के फूल की तरह है, पंखड़ियों की तरह, और बीच में जो द्वीप है जिसे अंतरद्वीप कहते हैं, उस अंतरद्वीप का जो मध्य है वो मायापुर है जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और जहाँ श्रीवास आंगन भी है स्थित है। इसलिए आइए हम सब खड़े हो जाएं और महाप्रभु के साथ आज हरिनाम संकीर्तन में नृत्य करें।
हरे कृष्ण 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 हरे।